आप सुन रहे हैं सुनो किताब।
हेलो बच्चों, मेरा नाम है नियति और आज हम पढ़ेंगे क्लास 9th की 10th चैप्टर फ्रॉम योर बुक द मोमेंट्स और लेसन का नाम है द बेगर। तो बिफोर वी एक्चुअली स्टार्ट इनटू आवर लेसन, लेट अस फर्स्ट अंडरस्टैंड कि इस लेसन की ओवरऑल समरी क्या है। तो बच्चों, ये जो लेसन है ना द बेगर, वो हमें एक्सप्लेन कर देता है कि कैसे लक्षौफ नाम का एक मैन, एक आदमी होता है, उसको किसी भी काम को देखने का नजरिया कैसे बदल जाता है। ओके, सो व्हाट इंड्यूस द बेगर लक्षौफ टू चेंज हिज वेज, लेट अस रीड एंड फाइंड आउट। ओके, तो चलते हैं हमारे पहले पैराग्राफ पे। काइंड सर, हैव पिटी, टर्न योर अटेंशन टू अ पुअर हंग्री मैन। फॉर 3 डेज आई हैव हैड नथिंग टू ईट, आई हैवंट 5 कॉपेक्स फॉर लॉजिंग। I swear it before God. For 8 years, I was a village school teacher, and then I lost my place through intruders. I feel a victim to calumny. It is a year now since I have had anything to do. तो इसमें कुछ important words हैं हमारे लिए, कुछ difficult words हैं हमारे लिए, तो वो हम पहले learn करने की कोशिश करेंगे। After that, I'll explain you कि ये actual para का मतलब क्या है, okay? ये जो बच्चों word है ना कॉपेक, इसका मतलब है जैसे कि हमारे इंडिया में रुपया जो होता है वो सबसे बड़ा होता है, करेक्ट? रुपया 1 रुपी 2 रुपी, और उससे निचला जो स्तर होता है, जो अभी इस जमाने में, अभी आजकल हम देखेंगे वो अभी नहीं चल रहा है, जिसको हम पहले के जमाने में कहते थे पैसा। ठीक है, मतलब 10 पैसे 20 पैसे, आपके पेरेंट्स आपको बताएंगे अच्छी तरह से। तो ये जो कॉपेक है वो रशिया का मतलब पैसा है, रशिया का। ठीक है, रशिया की करेंसी कौन सी है? रूबल है। और उससे निचला जो स्तर है, सब मॉनिट सब यूनिट, उसका नाम है, उसको कहते हैं कॉपेक। ओके, तो इंट्रूजिस का मतलब है कॉन्स्पिरसी, और कॉलमनी का मतलब है मेकिंग फॉल्स स्टेटमेंट। ठीक है, कॉन्स्पिरसी मतलब किसी को गलत तरीके से फंसाना। ओके, और कॉलमनी का मतलब है मेकिंग फॉल्स स्टेटमेंट, यानी कि गलत स्टेटमेंट्स करना। ओके, तो फिर से हम रीड करते हैं, क्योंकि वो फर्स्ट जो पैरा है वो थोड़ा सा डिफिकल्ट है। तो ये जो पैरा है वो कौन कह रहा है, ये जो सारे वर्ड्स है वो हमारा जो लक्षौफ है जो कि बेगर है, वो कह रहा है कि सर प्लीज मुझ पर दया कीजिएगा, मैं बहुत ज्यादा भूखा हूं और मैंने पिछले कुछ दिनों से कुछ नहीं खाया है, मेरे पास अभी खाने के लिए भी कुछ नहीं है, और पिछले कुछ दिनों में मतलब मैंने 5 कॉपेक्स मतलब 5 पैसे भी नहीं देखे, मैं भगवान की कसम खा के कहता हूँ। एंड फॉर 8 ईयर्स मतलब बेगर कह रहा है कि 8 साल से मैं एक स्कूल में एक टीचर था एक विलेज में, उसके बाद मैं अपना लॉस मतलब मैं जो अपना जॉब है वो खो दिया हूँ अभी। और क्या रीजन है जॉब खोने का? तो किसी ने तो मुझे गंदे तरीके से किसी कॉन्स्पिरेसी में किसी ने मुझे फंसाया था, उसके चलते मैं उस कॉन्स्पिरेसी का मैं विक्टिम हूँ। ओके, और 1 साल हुआ है अभी, मुझे करने के लिए कुछ ऐसा है भी नहीं। तो चलते हैं हमारे अगले पैरा पे। The advocate Seregi looked at the ragged, fawn-colored overcoat of the suppliant, at his dull, drunken eyes, at the red spot on either cheek, and it seemed to him as if he had seen this man somewhere before. तो हमारे जो एडवोकेट हैं, उनको क्या लगता है कि उसके ऐसे पहराव, उसका ओवरऑल देखकर बहुत ही गंदा मैला सा और शराबी उसकी आंखें होती है, मतलब उसने बहुत ज्यादा शराब पी रही होती है, पी रखी होती है। तो ये सब देख के और उसके गालों पे चीक, जिसका मतलब है, तो उसका गालों पे देख के उसको ये लगता है कि उन्होंने इसको कहीं तो देखा है इस आदमी को। ओके, आई हैव नाउ हैड एन ऑफर फॉर अ पोजीशन इन द प्रोविंस ऑफ कालुगाम, द मेडिकेंट वेंट ऑन, बट आई हैवंट द मनी टू गेट देयर, हेल्प मी काइंडली, आई एम अशेम टू आस्क बट आई एम ओब्लाइज्ड बाय द सर्कमस्टेंसेस। तो ये बेगर उनको कहता है कि एक जगह है जहां पे मुझे काम मिलने की संभावना है, मुझे शर्म आती है पूछने के लिए, बट क्या आप मुझे पैसों की मदद करेंगे, और मुझे शर्म आती है बट मैं क्या कर सकता हूँ, अभी मैं सर्कमस्टेंसेस पे डिपेंडेंट हूँ। ये कहता है वो बेगर हमारे एडवोकेट को। ठीक है, सरकीज आईज फेल ऑन द मेंस ओवरशूज, वन ऑफ विच वाज हाई एंड अदर वन वाज लो, एंड ही सडनली रिमेम्बर्ड समथिंग। लुक हियर, इट सीम्स टू मी आई मेट यू द अदर डे बिफोर यस्टरडे इन सडवोया स्ट्रीट, ही सेड, but you told me then that you were a student who had been expelled and not a village school teacher, do you remember? तो जो एडवोकेट है हमारे, वो उसको तुरंत से उसका झूठ पकड़ लेते हैं। क्यों? क्योंकि वो ना उसके पैरों में देखते हैं, शूज होते हैं, जो कि मतलब गलत 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 पैर होता है शूज का, तो उसको देख के उनको कुछ सडनली उनको याद आ जाता है कि अरे ये इंसान को तो मैं पहले भी मिला हूँ और इस इंसान को मैंने पहले भी कहीं देखा है। तब उनको याद आ जाता है किसी इंसान को उन्होंने एक स्ट्रीट पे देखा था, ठीक है, सर्वोदया स्ट्रीट पे देखा था जो कि रशिया में है, और उनको लगता है कि, और उनको याद आ जाता है कि उस इंसान ने उसको कहा था कि वो स्टूडेंट है जिसको कॉलेज से निकाला गया था और ना कि वो स्कूल टीचर है। तो बेगर जो है वो एकदम से कंफ्यूज हो जाता है, वो कहता है नो दैट कांट बी, मंबल द बेगर टेकन अ बैक, आई एम अ विलेज स्कूल टीचर एंड इफ यू लाइक आई कैन शो यू माई पेपर्स। तो ये जो बैगर है वो कहता है कि नहीं, ऐसा कोई बात नहीं है, क्योंकि उसको झूठ तो पकड़ा जाता है तो वो एकदम हड़बड़ा सा जाता है। तो उसको कहता है कि नहीं, ऐसा कोई बात नहीं है, मैं आपको पेपर्स शो कर सकता हूँ, मैं सारे प्रूफ आपको दिखा सकता हूँ कि मैं स्कूल में टीचर ही था पहले। हैव डन विथ लाइंग, यू कॉल्ड योर सेल्फ अ स्टूडेंट एंड इवन टोल्ड मी वॉट यू हैड बीन एक्सपेल्ड फॉर, डोंट यू रिमेम्बर? सर्गी फ्लश्ड एंड टर्न फ्रॉम द रैज क्रीचर विद एन एक्सप्रेशन ऑफ डिस्गस्ट। तो सर्जी को बहुत ज्यादा गुस्सा आ जाता है क्योंकि उन्होंने, उस बेगर ने उसको पहले ही कोई झूठ बोला था, और सर्गी उसको मतलब उनको एकदम से, वो एकदम उनके माइंड में फिट बैठ जाता है कि वो भूलते नहीं वो चीज उसको, और उनको गुस्सा इस बात का आ जाता है कि बेगर उनसे झूठ कह रहा था, पिछले भी दिनों उसने झूठ कहा था और अब भी वो झूठ कह रहा है। दिस इज डिसऑनेस्टी माई डियर सर, ही क्राइड एंग्रीली, दिस इज स्वैंडलिंग, आई शैल सेंड द पुलिस फॉर यू, डैम यू। तो वो कहता है कि, जो एडवोकेट है वो कहते हैं कि ये बहुत ज्यादा डिसऑनेस्टी है आपकी तरफ से और मुझे बहुत ज्यादा गुस्सा आ गया है अभी। तो यहाँ पे एक डिफिकल्ट वर्ड है स्वेंडलिंग, इसका मतलब है ओबटेन मनी डिसऑनेस्टली, मतलब गुस्सा आ जाता है एडवोकेट को क्योंकि जो बेगर है उसने डिसऑनेस्टी से मतलब झूठ बोल के वो पैसों की डिमांड कर रहा था इस वजह से। ओके सो मूविंग ऑन टू नेक्स्ट, सर ही सेड, मतलब यहाँ पे हमारे जो एडवोकेट है उनको बता देते हैं कि मुझे गुस्सा आ गया है और मैं अभी पुलिस को भेजूंगा आपके पास। तो बैगर कहते हैं सर, लेइंग हिज हैंड ऑन हिज हार्ट, द फैक्ट इज आई वॉज लाइंग, आई एम नीदर अ स्टूडेंट नॉर अ स्कूल टीचर, ऑल दैट इट वॉज अ फिक्शन, फॉर्मली आई सेंग इन द रशियन कॉयर एंड वॉज सेंट अवे फॉर ड्रंकनेस, बट वॉट एल्स कैन आई डू, आई कांट गेट अलॉन्ग विदाउट लाइंग, नो वन विल गिव मी एनीथिंग व्हेन आई टेल द ट्रूथ, व्हाट कैन आई डू। तो अब यहाँ पे जो है बेगर का जो सच है वो बाहर आ जाता है, वो कहता है कि नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है, मैं आपको झूठ कह रहा था, ना ही मैं स्टूडेंट हूँ और ना ही मैं स्कूल टीचर हूँ, वो तो बस मैंने झूठ कहा था, सच बात तो ये है कि मैं एक रशियन, एक सिंगिंग ग्रुप है उसके लिए गाना गाता था, पर अभी उन्होंने मुझे भेज दिया, उन्होंने मुझे निकाल दिया है, क्यों? क्योंकि मैं बहुत ज्यादा शराब पीता हूँ इस वजह से, और अभी मैं कुछ इसके बारे में कर भी नहीं सकता क्योंकि ये बस सर्कमस्टेंसेस है, मैं अभी इसके बारे में कुछ नहीं कर सकता क्योंकि मैं, मुझे झूठ बोले बिना नहीं रहा जाता। तो ये बहुत सी स्टूपिड सा आर्ग्यूमेंट जो बेगर है वो एडवोकेट को दे देता है सर्गी को। तो एडवोकेट कहते हैं व्हाट कैन यू डू, यू आस्क व्हाट यू कैन डू, क्राइड सर्गी कमिंग क्लोज टू हिम, वर्क दैट्स व्हाट यू कैन डू, यू मस्ट वर्क। तो एडवोकेट को बहुत ज्यादा गुस्सा आ जाता है, वो कहते हैं कि ऐसे तुम कैसे कह सकते हो कि मैं क्या कर सकता हूँ, तुम बिल्कुल कर सकते हो, और क्या कर सकते हो, तुम काम कर सकते हो। तो ये जो है राइट, वो कह रहे हैं, कहता है बेगर, वर्क, यस आई नो दैट माई सेल्फ, बट वेयर कैन आई फाइंड वर्क। अभी मैं बच्चों एक कंटिन्यूअस ये कॉन्वर्सेशन है वो आपको पढ़ती हूँ और उसके बाद आई टेल यू द मीनिंग ऑफ इट, ओके? उसके बाद आपको मतलब समझाती हूँ क्योंकि बीच बीच में कट होना ना, इट वॉन्ट बी फिजिबल फॉर अस, है ना? तो मैं एकदम से ये कॉन्वर्सेशन पूरा पढ़ती हूँ एंड देन आई एक्सप्लेन यू ऑल। वर्क, यस आई नो दैट माई सेल्फ, बट वेयर कैन आई फाइंड वर्क, हाउ वुड यू लाइक टू चॉप वुड फॉर मी, आई वुडंट रिफ्यूज टू दैट, बट इन दीज डेज इवन स्किल्ड वुड कटर्स फाइंड देमसेल्फ सिटिंग विदाउट ब्रेड, विल यू कम एंड चॉप वुड फॉर मी, यस सर आई विल, वेरी वेल, विल सून फाइंड आउट। सर्गी हैसेंट अलोंग रबिंग हिज हैंड्स, ही कॉल्ड हिज कुक आउट ऑफ द किचन, हियर ओल्गा ही सेड, टेक दिस जेंटलमैन इन टू द वुड शेड एंड लेट हिम चॉप द वुड। तो यहाँ पे क्या होता है कि जो एडवोकेट है वो बेगर से पूछता है कि क्या तुम काम करोगे, तो एडवोकेट, वो जो बेगर होता है वो कहता है हाँ काम करूंगा, बट कहाँ मिलेगा मुझे काम। तो एडवोकेट कहता है कि हाँ चलो ठीक है, तुम आ जाओ मेरे पास, मुझे एक वुड कटर यानी कि लकड़ी कट करने वाले इंसान की जरूरत है। तो वो जो हमारा बेगर है वो कहता है अरे मैं कैसे आ सकता हूँ, मेरे से बहुत अच्छे वुडकटर जो हैं वो बिना कुछ काम किए बैठे, मतलब उनको कुछ काम है ही नहीं करने को, वो तो घर पे बेकार बैठे हैं, मैं कैसे, मुझे कैसे काम मिल सकता है। तो एडवोकेट कहते हैं, सर जी उसके कोई नहीं नहीं ऐसी कोई बात नहीं है, तुम मेरे साथ आओ, अगर तुम काम करने के लिए तैयार हो तो मैं तुम्हें काम दे दूंगा। तो बेगर जो है वो कहता है कि ठीक है चलो मैं आता हूँ आपके साथ। तो अभी एडवोकेट जो उसको अपने घर पे ले जाते हैं, और अपने कुक जिसका नाम है ओल्गा उसको कहते हैं कि ये देखो ये नया आदमी मैं लाया हूँ, और इसको तुम वुड कट करने का मतलब लकड़ी तोड़ने का काम दे देना। द स्केयर को क्रो ऑफ बेगर श्रग्ड हिज शोल्डर्स एज इफ इन फ्लेक्सिबिलिटी एंड वेंट इरेसिटली आफ्टर द कुक। इट वॉज ऑब्वियस फ्रॉम हिज गेट दैट ही हैड नॉट कंसेंटेड टू गो एंड चॉप वुड बिकॉज ही वॉज हंग्री एंड वॉन्टेड टू वर्क, बट सिंपली फ्रॉम प्राइड एंड अशेम्ड एंड बिकॉज ही हैड बीन ट्रैप्ड बाय हिज ओन वर्ड्स। तो यहाँ पे राइटर हमें ये कहने की कोशिश कर रहे हैं कि जो मतलब बेगर है उसको वो अपने ही वर्ड्स में फंस जाता है। यहाँ पे हमें बच्चों एक वर्ड है फ्लेक्सिबिलिटी जिसका मतलब है कंफ्यूजन, और हेसेंट HASTENED हेसेंट का मतलब है टू रश इन टू समथिंग, है ना। तो और फ्लेक्सिबिलिटी का मतलब है इन कंफ्यूजन। तो बहुत ज्यादा वो जो उनका कुक होता है वो भी बहुत ज्यादा कंफ्यूजन में रहता है कि किस इंसान को वुड कट करने के लिए लाए हैं सर। और दूसरी बात क्या होती है कि बेगर जो है उसको समझ नहीं आता कि वो क्या करें, क्योंकि उसको अभी तो काम तो करना ही पड़ेगा, क्योंकि उसने कहा जो था कि हाँ मैं कोई भी काम करने के लिए तैयार हूँ, है ना। तो इट वॉज ऑब्वियस टू दैट हिज स्ट्रेंथ हैड बीन अंडरमाइंड बाय वोडका एंड दैट ही वॉज अनहेल्दी एंड डिड नॉट फील लाइक स्लाइटेस्ट इंक्लिनेशन फॉर टॉयल। तो शराब पीने के बाद मतलब वो बहुत ज्यादा शराबी होता है बेगर, और वो झूठ बस इसलिए बोलता रहता है ताकि उसको शराब मिल सके, है ना। तो अभी शराब के नशे की वजह से वो बहुत ज्यादा अनहेल्दी होता है, उसके पास खाने के लिए भी कुछ नहीं होता और वो बहुत ज्यादा वीक होता है ना। सर की हरिड इन टू द डाइनिंग रूम, फ्रॉम इट्स विंडो वन कुड सी द वुड शेड एंड एवरीथिंग दैट वेंट ऑन इन द यार्ड। स्टैंडिंग एट द विंडो सर की सॉ द कुक एंड द बेगर कम आउट इन टू द यार्ड बाय बैक डोर एंड मेक देयर वे अक्रॉस द डर्टी स्नो टू द शेड। तो मतलब सरगी जो होते हैं वो नोट करते हैं कि क्या क्या चल रहा होता है अपने बैकयार्ड में, और कैसे ओल्गा जो है उनका कुक जो है वो उसको क्या सही तरीके से दिखा रहा है क्या करना क्या नहीं करना। ओल्गा ग्लैड ग्रेटफुली एट हर कंपेनियन शोव्ड हिम असाइड विथ हर एल्बो अनलॉक्ड द शेड एंड एंग्रीली बैंग द डोर। मतलब ओल्गा जो है उनकी कुक होती है उसको बहुत ज्यादा गुस्सा आता है। ग्रेटफुली का मतलब है बहुत गुस्से से देखना किसी को, है ना। तो उनको बहुत ज्यादा गुस्सा आ जाता है और वो देखती है कि मतलब वो तो कुछ काम करने लायक दिखता नहीं उनको, तो बहुत ज्यादा गुस्से से क्या करती है उनको दिखाती है कि ये काम करना है, और वो उनको मतलब अनलॉक करती है, मतलब जो शेड होता है जहाँ पे वुड कट करने होते हैं वहां उनको भेजती है, और गुस्से से फिर वो दरवाजा है वो बहुत ज्यादा जोर से पटक देती है, है ना। नेक्स्ट ही सॉ द सूडो टीचर सिट हिमसेल्फ ऑन द लॉग एंड बिकम लॉस्ट इन द थॉट विथ हिज रेड चीक resting on his feet. The woman flung down an axe at his feet, spat angrily and juggled, judging from the expression of her lips, began to scold. The beggar arrogantly pulled the billet of the wood towards him, set it up between his feet and tapped it feebly with the axe. The billet wavered and fell down. The beggar again pulled it to him, blew on his freezing hands and tapped it to the axe copiously, as if afraid of hitting his overshoe or cutting off his finger. The stick of the wood again fell on the ground. तो जो यहाँ पे क्या वर्ड लिखा गया है बच्चों, सूडो टीचर। सूडो का मतलब है फेक, जो कि ना होती है वो, ठीक है। और ये जो वर्ड है PSEUDO, इसको हम प्रोनाउंस कैसे करते हैं, सूडो। बल्कि यहाँ पर यहाँ पे जो पी है ना बच्चों वो साइलेंट है ना, हम सूडो नहीं कहते, इट विल बी अ रॉन्ग प्रोनाउंसिएशन। हम क्या कहेंगे, सूडो। पी जो है उसका प्रोनाउंसिएशन नहीं आएगा यहाँ पे, ओके। तो ये जो सूडो टीचर है वो एक जगह पे बैठता है, मतलब हमारा जो बेगर है वो एक जगह पे बैठता है, कुछ काम नहीं करता, अपना जो हाथ है वो अपने फीस्ट मतलब अपने गाल जो है वो अपने फीस्ट पे रख देता है, ऐसे हताश सा बैठा होता है। और ओल्गा जो है वो देखती है उसको, उसको बहुत ज्यादा गुस्सा आता है क्योंकि वो कुछ काम नहीं कर रहा होता, और ओल्गा को देख के उसको भी अचानक दम से अजीब सा लगता है और वो काम करने के लिए उठ जाता है। पर काम करने के बजाय वो बहुत ज्यादा मतलब ऐसे बिहेव करता है जिसकी जैसे कि उसने कभी काम किया ही ना हो, और हाँ उसने काम किया भी तो नहीं था, और वो एकदम से ना ऐसे डिफिकल्ट काम जैसा हो ऐसे वो बिहेव करता है। और वो लकड़ी जो होती है ना, मतलब जो एक्स को, मतलब कुल्हाड़ी जो है उसको जो लकड़ी बैठी होती है वो बहुत बार बार से उसमें से निकल रही होती है। और जो बेगर है हमारा वो भी बहुत बहुत धीरे धीरे काम करने लगता है, एज इफ ही वॉज वर्किंग, एज इफ उसकी उंगली ना कट जाए, इतने धीरे वो वुड को चॉप करने लगता है। Sergey's anger had vanished and he now began to feel a little sorry and ashamed of himself for having set a spoiled, drunken, perhaps sick man to work at mental labor, at menial labor in the cold. An hour later, Olga came in and announced that the wood had been chopped. तो मतलब Sergey जो है हमारे एडवोकेट, उनको भी एकदम बुरा सा लगता है क्योंकि उन्होंने, उनको ऐसा लगता है कि उसने ऐसे अजीब सा बिहेव उस बेगर के साथ नहीं करना चाहिए था। क्यों? क्योंकि वो बहुत ज्यादा भूखा होता है, ड्रंक भी होता है और ऐसे छोटे काम उसको एडवोकेट ने नहीं देने चाहिए, ऐसा उनको लगता है। तो एक घंटा होता है, ओल्गा जो है उनकी मेड या फिर उनकी कुक, वो आती है और उनको कहती है कि हाँ सारे जो वुड है, सारा जो लकड़ी है वो कट गई है अभी। तो फिर यहाँ पे एडवोकेट Sergey का क्या रिस्पॉन्स होता है हम देखते हैं। तो वो कहते हैं, गुड, Give him a half a ruble, said Sergey. If he wants, he can come back and cut wood on the first day of each month. We can always find work for him. तो Sergey कहते हैं कि हाँ चलो ठीक है, अब उसने काम किया है तो उसको आधा, मतलब हम रुपया ही कहेंगे रूबल को, है ना, आधा रूबल उसको दे दो, यानी कि आधा रुपया उसको दे दो और उसको कहना कि वो जब भी आएगा तो हम उसको काम देने के लिए तैयार हैं। हमेशा मंथ का जो, मतलब महीने का, महीने के पहले दिन को आना और हम तुम्हें रोज काम देंगे महीने के पहले दिन को, ठीक है। तो गोइंग ऑन टू आवर नेक्स्ट पैरा, ऑन द फर्स्ट ऑफ द मंथ एंड वॉल्फ मेड हिज अपीयरेंस एंड अगेन अर्न अ हाफ अ रूबल, ऑल्दो ही कुड बेयरली स्टैंड ऑन हिज लेग्स। फ्रॉम दैट डे ऑन ही ऑफन अपीयर्ड इन द यार्ड एंड एवरी टाइम वर्क वॉज फाउंड फॉर हिम। नाउ ही वुड शोव स्नो, Now put the woodshed in order, now beat the dust on the rugs and mattresses. Every time he received from 20 to 40 kopecks and once even a pair of old trousers were sent out to him. मतलब वो क्या करता है बेगर, जैसे कि मतलब हमारे एडवोकेट ने कहा था, वो हर महीने उनके घर आता है, छोटे छोटे मीनियल जॉब्स है वो जो करता है, जैसे कि डस्ट, मतलब डस्ट निकालना वगैरह वगैरह, घर साफ करना, या फिर स्नो जो है, मतलब वहां पे बहुत ज्यादा स्नोफॉल होता है, बर्फ गिरती है, वो मतलब जगह से हटा के वहां पे प्रॉपरली काम करना। और एक बार तो क्या होता है, उसको इस काम के पैसे भी मिलते हैं और एक बार क्या होता है कि ओल्ड ट्राउजर जो है, ओल्ड कपड़े, वो भी उनको एडवोकेट दे देते हैं Sergey, है ना। तो व्हेन Sergey मूव्ड इनटू अनदर हाउस ही हायर्ड हिम टू हेल्प इन द पैकिंग एंड हाउलिंग ऑफ द फर्नीचर। दिस टाइम द वॉल्फ वाज सोबर, ग्लूमी एंड साइलेंट। He hardly touched the furniture and walked behind the wagons, hanging his head, not even making a pretense of appearing busy. He only shivered in the cold and became embarrassed when the caterers jeered at him for his idleness, his flabbiness, and his tattered fancy overcoat. After the moving was over, Sergey sent for him. तो मतलब क्या होता है कि एक तो वो बहुत ज्यादा दारू, मतलब बहुत ज्यादा शराब पीने की वजह से हमारा जो बेगर है वो थोड़ा सा, मतलब ऐसे बहुत ज्यादा सिक फील करने लगता है। और जब एक बार क्या होता है कि हमारे जो राइटर है, जो Sergey है, एडवोकेट है, वो एक बार अपना घर मूव कर रहे होते हैं, घर मतलब घर की कुछ, उनको घर अपना चेंज कर रहे होते हैं वो, और घर की उनकी कुछ चीजें होती हैं, तो वो मूव करने के लिए फर्नीचर वगैरह वो क्या करते हैं, इस जो इंसान है वो बेगर, उसको बुलाते हैं फिर से। और Sergey को उनमें चेंज भी दिखता है उस बेगर में, कि वो पहले जैसा नहीं होता है, है ना, वो सोबर होता है। सोबर का मतलब उसने शराब का नशा भी करना कम कर लिया होता है। तो ये सब चीजें देख के Sergey जो है वो खुश हो जाते हैं। वेल, आई एम हैप्पी दैट माई वर्ड्स हैव टेकन इफेक्ट, ही सेड, हैंडलिंग हिम अ रूबल। हियर इज फॉर योर पेन्स, आई सी यू आर सोबर एंड आई हैव नो ऑब्जेक्शन टू वर्क। वॉट इज योर नेम? लक्षोफ। वेल लक्षोफ, I can now offer you some other cleaner employment. Can you write? I can. Then take this letter to a friend of mine tomorrow and you will be given some copying to do. Work hard, don't drink and remember what I have said to you. Goodbye. So Sergey kehte hai ki main bahut zyada khush hu और इसी खुशी की वजह से उसके मतलब वो शराब का नशा भी उसने कम किया होता है। तो सर के क्या करते हैं, उसको रूबल देते हैं एक, ऐसे क्योंकि उसने बहुत ज्यादा काम किया होता है। और उसको पूछते हैं कि तुम्हारा नाम क्या है, तो वो बेगर कहता है कि मेरा नाम लक्षौफ है। तो राइटर मतलब एडवोकेट उसको पूछते हैं कि ठीक है, और मैं तुम्हें एक और काम देने के लिए तैयार हूँ, क्या तुम लिख सकते हो? तो वो कहते हैं कि हाँ मैं लिख सकता हूँ। तो सरगी कहते हैं कि मैं तुम्हें एक लेटर दे देता हूँ, वो मेरे फ्रेंड को जाके दे देना, और कुछ काम है लिखना लिखने का वो भी कर लेना। याद रखो कि तुम्हें शराब भी नहीं पीनी, और बाकी जो चीजें मैंने तुम्हें बताई हैं कि वर्क हार्ड करना बहुत ज्यादा, तो वो भी कर लेना तुम। ऐसा कह के सरगी वहां से निकल जाते हैं, है ना? तो देखते हैं आगे क्या होता है। Pleased at having put a man on the right path, Sergey tapped Lakshov kindly on the shoulder and even gave him his hand at parting. Lakshov took the letter and from that day forth came no more yard for work. 2 years went by. Then one evening, as Sergey was standing at the ticket window of the theatre paying off his seat, he noticed a little man beside him with a coat, collar of curly fur, and worn silkskin cap. This little individual timidly asked the ticket seller for a seat in the gallery and paid for it in the copper coins. Lakshov, is that you? Cried Sergey, recognizing the little man from his former wood chipper. How are you? What are you doing? How is everything with you? तो मतलब होता क्या है, एक दिन कुछ साल बाद जब हमारे सरगी जो है एडवोकेट, वो टिकट काउंटर पे खड़े होते हैं, है ना, मतलब टिकट लेने के लिए ताकि वो शो देख सके, तभी वो एक इंसान को नोटिस करते हैं और उनको तभी एकदम से याद आ जाता है कि तो लक्षौफ है। वो बहुत ज्यादा खुश होते हैं और उसको पूछते हैं कि क्या तुम लक्षौफ हो, कैसे हो, कहाँ हो और कैसा चल रहा है तुम्हारा सब कुछ। तो जवाब क्या मिलता है उनको, ऑल राइट आई एम अ नोटरी नाउ एंड आई एम पेड 35 रूबल्स अ मंथ। तो लक्षौफ कहता है कि हाँ मैं अभी नोटरी हो गया हूँ एडवोकेट, और अभी मुझे 35 रूबल मिलते हैं महीने के। थैंक हेवन, दैट्स फाइन, आई एम डिलाइटेड फॉर योर सेक, आई एम वेरी वेरी ग्लैड लक्षौ, यू सी यू आर माई गॉडसन इन द सेंस आई गेव यू अ पुश अलोंग द राइट पाथ। यू नो, डू यू रिमेम्बर वॉट अ रोस्टिंग आई गेव यू? आ आई नियरली हैड यू सिंकिंग इन टू द ग्राउंड एट माई फीट दैट डे। थैंक यू ओल्ड मैन फॉर नॉट फॉरगेटिंग माई वर्ड्स। तो सरगी कहते हैं कि तुम्हें याद है हमने कैसे कैसे हमारी बातें हुई थी पहले, और कैसे मैंने तुम्हें तुम्हारी बहुत ज्यादा खिंचाई की थी, बहुत कि मैंने तुम्हें बहुत कम कम दर्जे के काम दिए थे, तुमको याद है? तो सर की कहते कि थैंक गॉड तुमने ये सारी बातें भूली नहीं, और तुमने इस पर काम करके तुम अब अच्छे आदमी बन गए हो। थैंक यू टू, सेड लक्षौ, इफ आई हैडन्ट कम टू यू देन आई माइट स्टिल हैव बीन कॉलिंग माई सेल्फ अ टीचर और अ स्टूडेंट टू दिस डेज। यस, बाई फ्लाइंग एट योर प्रोटेक्शन आई ड्रैग माई सेल्फ आउट ऑफ इट। तो लक्षौफ भी उनको ग्रेटिट्यूड है वो शो करता है, कहता है कि हाँ क्योंकि मैं आपके पास आया था इसीलिए मेरे जो सारे काम है वो अभी पॉसिबल हो रहे हैं, वरना आज भी मैं ऐसे ही झूठ किसी ना किसी को कहते हुए मैं फिर रहा होता, या फिर आज भी मैं उसी शराब के नशे में धुत पड़ा रहता। आई एम वेरी ग्लैड इंडीड, थैंक यू फॉर योर काइंड वर्ड्स एंड डीड्स, आई एम वेरी ग्रेटफुल टू यू एंड योर कुक, गॉड ब्लेस दैट गुड एंड नोबल वुमेन, यू स्पोक फाइनली देन and I shall be indebted to you to my dying day. But strictly speaking, it was your cook, Olga, who saved me. तो यहाँ पे लक्षौ जो है बहुत ज्यादा बड़ा बड़ा सीक्रेट रिवील करते हैं कि सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट, अगर उनके लाइफ चेंजिंग में कोई इंसान इम्पोर्टेंट है तो वो ओल्गा आपकी कुक है। तो राइटर कहते हैं ऐसा क्यों? तो आगे आगे देखते हैं उनको बेगर हमारा क्या कहता है। तो वो कहता है, When I used to come to your house to chop wood, She used to begin, Oh, you sot, you. Oh, you are miserable creature. There's nothing for you but ruin. And then she would sit down opposite to me and grow sad, look into my face and weep. Oh, you unlucky man. There is no pleasure for you in this world, and there will be none in the world to come. You drunkard, you will burn in the hell. Oh, you unhappy one. And so she said, carry on. You know, in that strain, I can't tell you how much misery she suffered, how many tears she shed for my sake. But the chief thing was, she used to chop the wood for me. Do you know, sir, that I did not chop one single stick of the wood for you? She did it all. Why this saved me? Why I changed, why I stopped drinking at the sight of her, I cannot explain. I only know, owing to her words and noble deeds, a change took place in my heart. She set me right, and I shall never forget her. However, it is time to go now. There goes the bell. Lakshov bowed and departed to the gallery. मतलब इस बड़े से पैराग्राफ में हमको क्या कहने की कोशिश कर रहे हैं राइटर, तो बेगर जो है हमारा फॉर्मर बेगर, तो वो बहुत बड़ा सीक्रेट रिवील करता है हमारे एडवोकेट को. क्या कहता है वो? वो ये कहता है कि मेरे में जितने भी चेंजेस हुए हैं ना, उसके लिए जिम्मेदार आपकी जो कुक है ओल्गा, वो है. क्यों? क्योंकि मैं आपको ये बात कहता हूँ कि जब भी मैं आपके पास आपके घर पे आता था वुड कट करने के लिए, यानी कि लकड़ियां कट करने के लिए, मैं एक भी लकड़ी कट नहीं करता था. वो तो बस आपकी कुक थी ओल्गा, वो कट कर रही होती थी वो सारा वुड. बट वो सारा वुड कट करते हुए वो बस मेरे तरफ देखती थी और उसको बहुत सारे गंदे वर्ड्स की बोला करती, बहुत सारे गंदे सेंटेंसेस मेरे लिए कहा करती थी वो, और उसके एंड में रोती भी थी वो. और ये सब कुछ देख के हमारा बेगर कहता है कि उसको बहुत ज्यादा बुरा लगता है, वो बहुत ज्यादा एम्बेरस्ड फील करता है, और इसकी वजह से वो क्या करने लगता है बाद में, वो अपना काम खुद से करता है और जो शराब की उसकी नशा भी होता है वो भी छोड़ देता है वो. और इतना कह मैंने मतलब वो कहता है कि मैंने शराब की नशा भी अभी छोड़ दी है. इतना कह के बेगर हमारा क्या करता है, फॉर्मर बेगर हमारे एडवोकेट साहब को कहता है कि मैं आपकी जो सर्वेंट है, आपकी जो कुक है, उसके लिए मैं फॉरएवर उसका मैं थैंकफुल रहूंगा, उसको मैं फॉरएवर अपना ग्रेटिट्यूड उसके लिए मैं रखूंगा अपने मन में, क्योंकि अगर वो ना होती तो मैं इतना ज्यादा चेंज नहीं होता, है ना. तो हमारा लेसन हमें क्या कहने की कोशिश करता है बच्चों, हमारा लेसन हमें ये कहने की कोशिश कर रहा है अभी कि भले ही इंसान कितना ही डिफिकल्ट टू डील विथ हो, पर अगर हम उससे काइंडनेस से बिहेव करें, अगर हम अच्छी तरह से उससे बिहेव करने लगे, तो हो सकता है कि वो इंसान एक मतलब एक गंदा इंसान, एक शराबी, एक नशे के धुत रहने वाला इंसान अच्छा आदमी भी बन सकता है. और ये किसने प्रूव किया बच्चों? ये हमारा जो राइट हमारे लेसन में जो ओल्गा नाम की जो कुक थी, उन्होंने ये बात प्रूव करी. तो हम क्विकली देखते हैं हमारे डिफिकल्ट वर्ड्स, तो मैंने आपको बीच में मतलब बीच बीच में ही बता लिए थे, बट फिर भी हमारे लिए कुछ और वर्ड्स हैं यहाँ पे, वो हम सॉल्व करेंगे, है ना. तो यहाँ पे एक वर्ड है बिलेट, जिसका मतलब है थिक पीस ऑफ वुड, यानी कि जो लकड़ी के पीछे जो डंडा होता है ना बच्चों, वो वाला. वेफ का मतलब होता है होमलेस पर्सन. शॉवल का मतलब होता है रिमूव स्नो विद अ शॉल, जो मैंने आपको बताया था. रोस्टिंग का मतलब होता है स्कोल्डिंग करना, मतलब मजाकिया तरीके से डांटना किसी को. और सॉर्ट का मतलब होता है SOT, हैबिचुअल ड्रंकर्ड, यानी कि शराबी, है ना. तो क्विकली हम देखते हैं हमें कौन कौन से अभी सवाल सॉल्व करने हैं. हमें बच्चों 6 सवाल है, जिसका मैं आपको आउटलाइन दूंगी ओवरऑल, विच यू विल हैव टू राइट डाउन लेटर. ओके, तो शुरू करते हैं हमारे पहले सवाल से. पहला सवाल है, हैज लक्षोव बिकेम अ बेगर बाय सर्कमस्टेंसेस और बाय चॉइस. तो सवाल हमें ये पूछ रहा है कि लक्षोव जो है वो बेगर था पहले से, या फिर चॉइस ने या फिर अपनी मर्जी से वो बेगर बना. तो इसका जवाब क्या है कि लक्षोव जो है वो एक रशियन जो सिंगिंग ग्रुप है उसमें काम करता था, और वो बेगर नहीं था, बस उसकी शराब की आदतों में से उसको उस क्वायर ग्रुप से निकाला गया था, और ही बिकेम बेगर बाय चॉइस, मतलब अपनी मर्जी से वो बेगर बना, ना कि सर्कमस्टेंसेस की वजह से, है ना. तो सवाल नंबर 2 है, व्हाट रीजन डस ही गिव टू सर्गी फॉर टेलिंग लाइज, है ना. तो इसका जवाब है, लक्षोव टोल्ड अ ट्रुथ एंड एक्सेप्टेंस एंड एक्सेप्टेड दैट ही वाज अ लायर. तो मतलब वो एक्सेप्ट करता है कि सारी गलती मेरी थी और मैंने झूठ कहा था. फॉर्मली ही यूज्ड टू बी अ सिंगर, ही टोल्ड लाइज टू सीक द फेवर फ्रॉम अदर्स. If he had spoken the truth, none would have helped him. So he decided to tell lies. तो मतलब लक्षोव क्या करता है, झूठ बोल के अपने लिए पैसे कमाता होता है वो, और मतलब लोगों को ऐसे ही कहता था कि मैं सिंगर हूँ, या फिर नॉट सिंगर सॉरी, वो ऐसे ही कहता था कि मैं किसी स्कूल में टीचर था, या फिर किसी को कहता था मैं स्टूडेंट था. बेसिकली उसको झूठ बोल के पैसे निकलवाने की आदत थी. आते हमारे क्वेश्चन नंबर 3 पे, Is Lakshov a willing worker? Why then does he agree to chop wood for Sergey? तो इसका जवाब है no. He was not a willing worker. ही वॉज टू वीक टू वर्क, मतलब वो शराब की आदत से बहुत ज्यादा वीक भी बन जाता है वो, और उसको ये सारे काम करना पॉसिबल नहीं होता है ना. ही हैड लॉस्ट स्ट्रेंथ एंड स्टेमिना ड्यू टू हिज हैबिट ऑफ ड्रिंकिंग एंड सेकेंडली ही वॉज अ मिडिल एज मैन. ही अग्रीड टू चॉप वुड बिकॉज ऑफ प्राइड एंड शेम ही हैड बीन ट्रैप्ड बाय हिज ओन वर्ड. सो ही हैड नो अदर वे बट टू एक्सेप्ट सर्गीज ऑफर. मतलब क्या होता है कि उसको बस शर्म की वजह से और अपने ही, क्योंकि वो अपने ही वर्ड्स में फंसा हुआ होता है, इसलिए वो सर्गी की ऑफर मान लेता है. तो आते हैं हमारे सवाल नंबर 4 पे. सर्गी सेज आई एम हैप्पी दैट माई वर्ड्स हैव टेकन इफेक्ट. व्हाई डज ही से सो? इज ही राइट इन सेइंग सो? तो इसका जवाब है, सर्गी लुक्ड सेटिस्फाइड विद परफॉर्मेंस ऑफ बेगर एंड फेल्ट हैप्पी व्हेन लक्शॉफ job of packing and howling in the furniture was over. He praised him while handling him ruble. But he was not right in saying so because Lakshov had not developed the habit of working hard. He was still an idle fellow. मतलब लक्षोफ ऐसे ही होता है, वो बिल्कुल भी चेंज नहीं हुआ होता है. तो इसका ये जो सेंटेंस जो सर्गी कहते हैं कि मेरे वर्ड्स की वजह से तुम सुधर गए हो, तो बहुत वो इतना भी सच नहीं होता है ना, कि वो तो बस ओल्गा होती है जिसकी वजह से हमारे जो फॉर्मर बेगर हैं वो सुधरे होते हैं, है ना. तो आते हैं सवाल नेक्स्ट पे, हमारे सवाल नंबर 5. लक्षोव इज अर्निंग 35 रूबल्स अ मंथ. हाउ इज ही ऑब्लिक टू सर्गी फॉर दिस? सर्गी पेड वेरी इंपॉर्टेंट रोल इन इंप्रूविंग द कंडीशन ऑफ द बेगर. इट वॉज बिकॉज ऑफ सर्गी दैट लक्षोव कुड अर्न 35 रूबल्स अ मंथ. ही ऑफर्ड हिम द जॉब टू चॉप द वुड एट हिज होम. लेटर ऑन He sent him to one of his friends to do copying. Lakshov was highly obliged to Sergey because now he was notary because of him. तो यहाँ पे हमें ये सवाल ये पूछ रहा है कि लक्षोव जो है 35 रूबल्स महीने का कमाता है, कि क्या वो सर्गी को मतलब gratitude उसने पे करना चाहिए, oblige है वो सर्गी के लिए? तो इसका जवाब है हाँ, क्योंकि सर्गी उसको अपने एक दोस्त के यहाँ भी भेजता है फॉर अ जॉब जो कि होता है कॉपिंग का, है ना. तो लक्षोव वॉज हाईली ऑब्लाइज टू सर्गी बिकॉज नाउ ही वॉज नोटरी बिकॉज ऑफ हिम, है ना. तो बिकॉज लक्षोव जो है वो सर्गी के लिए बहुत ज्यादा ऑब्लाइज होता है, क्योंकि अब की उसकी जो करंट जॉब होती है वो होती है बिकॉज ऑफ सर्गी इन हिज लाइफ, है ना. तो आते हैं हमारे 6th सवाल पे. ड्यूरिंग द कॉन्वर्सेशन Lakshov reveals that Sergey's cook Olga is responsible for the positive change in him. How has Olga saved Lakshov? Iska answer hai, Olga was social and sympathetic lady. She loved humanity. She realized the condition of Lakshov and tried her best to improve the same. She did the work of his part and she wanted to change him. She kept criticizing him in order to improve him. He realized her feelings towards him and a change took place in his heart. So Olga was responsible for the positive change in him. तो इसका मतलब ये है बच्चों कि ओल्गा जो होती है वो सच में जो हमारा बेगर है, एक्स बेगर का इम्प्रूवमेंट होने के लिए वो बहुत ज्यादा, उसका हाथ बहुत ज्यादा होता है. क्यों? क्योंकि ओल्गा एक बहुत ज्यादा सिंपथेटिक औरत होती है. उनको ह्यूमैनिटी से, मतलब मानवता से उनको बहुत लगाव होता है. वो लक्षोव की कंडीशन देखती है कि लक्षोव कैसे बहुत दारू के नशे में धुत पड़ा रहता है और उसको किसी चीज की कोई खबर नहीं रहती. वो हमेशा पैसों के लिए लोगों के साथ झूठ बोलता रहता है और वो पैसे लेकर वो बस अपनी शराब की नशे में वो पैसे वो उड़ा देता है. तो ये सारी चीजें ओल्गा को बुरी लगी. उन्हें लगा कि लक्षोव जो है वो अच्छी तरह से इम्प्रूव हो अपनी लाइफ में, कुछ ना कुछ वो करे. इसी वजह से वो क्या करती है, वो ये सारे लक्षोव के लिए वो सारे काम करती रहती है और इसके बदले में लक्षोव को पैसे मिलते हैं. तो ये सारी बातें कहीं ना कहीं लक्षोव को बहुत ज्यादा हर्ट हो जाती है. वो बहुत ज्यादा एम्बेरस्ड यानी अपने आप पे शर्म महसूस करने लगता है. और इसका रिजल्ट क्या होता है कि लक्षोव को अपनी गलतियों का एहसास हो जाता है और वो एक नोटरी की पोजिशन पे अपने आप को पाता है, अपने आप को वो उस पोजिशन पे ले जाता है. जो यहाँ पे एक आखिरी का सवाल है जो आपको थिंक करने के लिए रखा है, How can we help beggars या फिर abolish begging? तो हम लोग begging को कैसे abolish कर सकते हैं, यह आपको अपने words में लिखना है. मैं इसके लिए आपको कुछ ideas दूंगी, उसके बाद आपको अपने ये जो सवाल है अपने notebook के खुद के शब्दों में आपको लिख देना है. Okay? So let me give you a fair idea of it. तो ओवरऑल इसकी आइडिया है कि बेगर्स को हम कैसे बेगरी जो है वो खत्म कर सकते हैं। तो इसके लिए बच्चों हमें क्या करना चाहिए कि मोस्ट ऑफ द टाइम हम क्या कर देखते हैं कि छोटे छोटे बच्चों को भी भीख मांगी जाती है, मतलब उनको फोर्स किया जाता है कि वो भीख मांगे। तो हम लोग क्या करते हैं मोस्ट ऑफ द टाइम, हम उनको पैसे देते हैं और हम उस जगह से वहां से चले जाते हैं। बट हमको यहाँ पे ये समझना चाहिए कि देर इज समथिंग नोन एज ह्यूमन ट्रैफिकिंग जो कि चलता है, जहाँ पे छोटे बच्चों को या फिर किसी भी इंसान को भीख मांगने पर मजबूर किया जाता है। तो जब हम उनको पैसे देते हैं तब वो पैसे उनके पास कभी नहीं पहुंचते, उनका जो ओरिजिनल जो हेड होता है उसके पास जाते हैं। तो हम एज ए सिटीजन छोटे तौर पे हमको कैसे मदद कर सकते हैं, तो इंस्टेड ऑफ गिविंग देम मनी हम उनको क्या दे सकते हैं बच्चों, हम उनको फूड दे सकते हैं, खाना खाने के लिए दे सकते हैं। तो इसका क्या होगा रिजल्ट कि खाना तो वो अपने लीडर को नहीं जाके देंगे ना, वो खाना तो खुद खाएंगे। और उसी प्रकार से हमारे गवर्नमेंट को भी कुछ कदम लेने चाहिए जिसके तहत गवर्नमेंट जो अच्छे भले लोग हैं, मतलब जो हैंडीकैप वगैरह नहीं है, उनको एक अच्छा स्किल्ड लेबर यानी कि उनको कुछ ऐसे सिखाया जा सकता है, कुछ ऐसे काम जिसके तहत वो अपना गुजारा खुद कर सके। और हैंडीकैप लोग जो हैं उनके लिए भी कुछ ना कुछ ऐसे तरीके गवर्नमेंट को भी सोचने चाहिए जिसके तहत बेगरी जो है, जो घिनौना ये जो अपराध है बेगरी, या फिर जो मतलब उनको जबरदस्ती भीख मांगने के लिए जो लोग मजबूर करते हैं, इन जैसे अपराधों को हम लोग टोटली जड़ से सोसाइटी से हमारे मिटा सके। तो बच्चों हमने इस लेसन में क्या पढ़ा, हमने इस लेसन में ये पढ़ा कि अगर हम अच्छे, अगर हमारे मन में अगर अच्छा अच्छी चीजें हैं, जैसे कि ओल्गा जो लेखक जो इस जो लेसन है उसमें जो एडवोकेट है सर, ये उनके यहाँ पे जैसी जो औरत होती है ओल्गा, वो जैसे होती है इंसान के तौर पे में इतनी ज्यादा ह्यूमैनिटी भरी होती है, अगर हम उन जैसा अगर बर्ताव करें तो कहीं ना कहीं ऐसे लोगों के मन में भी जो खुद काम नहीं करना चाहते, जो बस ऐसे नशे के हालत में धुत पड़े रहना चाहते हैं, उनकी लाइफ में भी बदलाव हम ले आ सकते हैं। तो थैंक यू फॉर पेशेंटली लिसनिंग इन टू दिस लेक्चर। बाय बाय, सी यू इन योर नेक्स्ट क्लास।
सुनो किताब से सुनने के लिए आपका धन्यवाद।